ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है, गौरताई का दर्शन कर लिया आप सबने। गौर सुंदर की
जय।
तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ समय के लिए चर्चा करेंगे। आप सबने कई बार चैतन्य महाप्रभु के चरित्र और उनके कार्यकलापों को सुना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे और प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन के दरमियान शुरुआत में ही प्रभुपाद ने पूछा, आप में से कौन बताएगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो सारे भक्त हाथ ऊपर करके बोलते जा रहे थे। किसी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं, किसी ने कुछ कुछ चीजें कही। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्त अलग अलग उत्तर दे रहा था, लेकिन प्रभुपाद ने कहा, जैसे एक ने कहा कि कृष्ण के अवतार हैं, तो प्रभुपाद कहते नहीं, हाँ चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है? कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। तो जो राधा कृष्ण का युगल तनु, हाँ वो चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम जब इस्कॉन में आते हैं तभी सुनते हैं कि और भी एक कोई है भगवान। पहले से इतने सारे भगवान राम नरसिम्हा दशावतार और उसमें और एक कौन आ गए? चैतन्य महाप्रभु। तो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है जब 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 हम शुरुआत के दिनों में इन सब चीजों को सुनते हैं, तो समझना या फेथ होना बड़ा कठिन होता है। लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ये कोई इन्वेंशन नहीं है इस्कॉन का या फिर बंगाली गौड़िया वैष्णव का। हाँ, इसका वर्णन, चैतन्य महाप्रभु का वर्णन सारे शास्त्रों में प्राप्त होता है, महाभारत पुराणों में, श्रीमद् भागवतम, हाँ कोई भी ग्रंथ उठा ले उसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। इसी कारण से समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, इसलिए प्रभुपाद बहुत जोर देते थे। और प्रभुपाद जानते थे कि कलयुग के लिए जीवों का उद्धार यदि होना संभव है तो केवल चैतन्य महाप्रभु ही इन जीवों के लिए चाहिए ऐसे अवतार। इसलिए प्रभुपाद सबसे पहले जो विग्रह प्रभुपाद ने इंस्टॉल किए इस्कॉन में वो कौन से थे? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, फिर गौर निताय। तो गौर निताय की स्थापना एक स्थान में प्रभुपाद कर रहे थे, एक मंदिर में, और ऐसे ही ना गौर निताय थे जिनके स्थापना की और प्रभुपाद प्रवचन देने के लिए बैठ गए। जैसे प्रवचन देने के लिए बैठे तो प्रभुपाद के मुख से ये दो शब्द निकले, प्रभुपाद गौरनिता को ऐसे देखते जा रहे हैं और दो शब्द निकले उनके मुख से, वो थे परम करुणा बहु द्विजनम। ऐसे प्रभुपाद ने बोला तो प्रभुपाद के आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इनको विग्रह, इनको मूर्ति तब तक हम समझ स्वीकार करते या समझते हैं जब तक हम, हमारे हृदय में उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी या प्रेम की भावना ना हो। लेकिन जब प्रेम की भावना होती है हृदय में, उनके बारे में एक क्वालिटी को आप रिमेम्बर करते हो तो आपके आंसू क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। इसको कहते हैं प्रेम, उन्नत अफेक्शन का भाव। तो प्रभुपाद ने जैसे गौरनिताय को देखा, श्री लोचन दास ठाकुर का ये जो गीत है उसके शुरुआत के दो शब्द प्रभुपाद ने बोले परम करुणा बहु द्विजन, तो प्रभुपाद का हृदय गदगद हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभुपाद कहते कैसे संभव है इनसे बढ़कर दयालु अवतार होना। करुणा तो हमने देखी है, लेकिन करुणा की सीमा क्या है, चैतन्य महाप्रभु है। मार खाय प्रेम दे दयालु तो नहीं है, मतलब मार खा रहे हैं लेकिन उसके बदले में आपको थप्पड़ नहीं दे रहे हैं, जैसे को तैसा। हाँ, नहले पे धैला, पता नहीं क्या है ये सब, इस आंदोलन में नहीं है। यहां चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का वर्णन आता है, जगाए मदाए जब उनको मारते हैं, सर में प्राप्रहार करते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के बारे में वो कोई निगेटिव नहीं सोचते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं कि नहीं इसको प्रेम देना है। तो चैतन्य महाप्रभु वो अवतार है दया दयालु, जो वास्तव में मार खाय प्रेम दे दयालु तो नहीं है, मार खा रहे हैं लेकिन दूसरों को क्या दे रहे हैं, प्रेम। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे परम भगवान दयालु, जो इनकार्नेशन है या दयालु भगवान से चैतन्य है, उनका आश्रय या उनके चरण छोड़कर किसी और जगह जाएगा। वो कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति होगा जो किसी और स्थान में आश्रय ढूंढेगा। तो ऐसे भगवान कृष्णा साक्षात एक भक्त के रूप में आते हैं, और भगवत भक्ति की जो परिसीमा है, भगवत भक्ति तो सबने सिखाई, लेकिन जो भगवत भक्ति का जो परिसीमा है वो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, सिखाते हैं। या चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण आते हैं और हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को वहां मिलते हैं इलाहाबाद प्रयाग में, तो रूप गोस्वामी बंगाल के महान मंत्री थे 500 साल पूर्व। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा करने के लिए आए, तो उस समय वो अपने एक भ्राता अनुपम के साथ महाप्रभु से मिले। चैतन्य महाप्रभु से पहली बार जब उन्होंने देखा दूर में चैतन्य महाप्रभु को, तो वो दंडवत प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करते हुए क्या कहते हैं, नमो महा वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो ये प्रणाम मंत्र रूप गोस्वामी ने दिया है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं ये वही बात है जो प्रभुपाद ने कही, बल्कि प्रभुपाद ने जब इंस्टॉल किया गौरनिताय को वहां विदेशों में, प्रभुपाद कहते हैं, उन प्रार्थना करते हैं गौरनिताय को रोते हुए, प्रभुपाद कहते हैं कि हे कृष्णा, हे गौर सुंदर, मैं आप इन म्लेच्छों के हाथों में आपको छोड़ के जा रहा हूं, आप इनकी सेवा को क्या करो, स्वीकार करो। हाँ, तो राधा कृष्ण तो बड़े अपराधों का विचार करते हैं, लेकिन गौरनिताय नहीं, गौरनिताय थोड़ी सी भी कोई सेवा करता है सर्वस्व दे देते हैं। नित्यानंद प्रभु कहते हैं जो गौरांग का उच्चारण करेगा मेरी जिम्मेदारी है उसको कृष्ण प्रेम से उसका हृदय भरने की, एक बार गौरांग का उच्चारण करो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपराधों को नहीं देखते, दोषों को नहीं देखते, वो देखते हैं कि अपनी थोड़ी सी भी कुछ सेवा की है चैतन्य महाप्रभु के लिए, कृष्ण के लिए, भक्तों के लिए, तो उससे भगवान अपने आप को दे डालते हैं और अपना जो अद्भुत प्रेम है वो प्रदान करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है। अब देखो चैतन्य महाप्रभु जब उनके एक महान भक्त श्रीवास ठाकुर उनके आंगन में कीर्तन किया करते थे, उनका जो आंगन था चारों साइड से क्लोज हुआ करता था, एक साल के लिए उन्होंने कीर्तन किया और ये सब भक्त मिलके कीर्तन में नाचते थे, गाते थे, और लेकिन एक ऐसे डिवोटी लेडी थे जो क्या करते थे, एक सेवा करते थे। कौन सी सेवा? जल लाने की सेवा, घड़े भर भर के जल लाने की सेवा वो करते थे और कोई देखता नहीं था उसकी सेवा के लिए, किसी ने आज तक अप्रिशिएट नहीं किया है। लेकिन कई बार हमारा भाव क्या होता है, मैं ऐसा कार्य ऐसी सेवा करना चाहता हूं जिसके द्वारा 10 लोगों के नजरों में मैं आ जाऊं, मेरी थोड़ी प्रशंसा हो जाए। तो ठीक है, इन सब से प्रशंसा और ये सब मिल सकता है, रिस्पेक्ट आदि, लेकिन कृष्ण के द्वारा नहीं मिलेगा, कृष्ण के आंखों में हम नहीं बैठेंगे। तो वो जो स्त्री थे जिसका नाम दुखी था, वो निरंतर बिना किसी ये सोचे कि मुझे लोग देखे कि देखो मैं कितना जल लाती हूँ सबके लिए और बहुत कुछ कार्य करती हूँ, ये भावना ना रखते हुए है, वो केवल सिंसियरली सेवा में लगे हुए थे और कोई विचार नहीं है, सेवा के पीछे मेवा प्राप्त करने की भावना नहीं थी, थोड़ा सा एप्रिसिएशन प्राप्त करने की भी भावना नहीं थी, वो निमग्न थी सेवा में, डूबी हुई थी। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जब नाच गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे भक्तों के संग, तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते बैठ गए, बैठे तो उनकी नजर गई और उन्होंने श्रीवास ठाकुर जिनके घर में ये कीर्तन हो रहा था पूछा कि मुझे बताओ ये कौन है। उन्होंने कहा ये तो एक जिसका नाम दुखी है और ये क्या करती है, भक्तों के लिए जल लाने की सेवा करती है। महाप्रभु ने जब सुना ना, पहले महाप्रभु ने क्या देखा कि इतने सारे मटके जल से भरे हुए लाइन में लगे हुए हैं और बहुत सुंदर रूप से है। कई बार होते हैं नाम सेवा करते, जैसे सोचो प्रसाद सेवा लगा दे, बकेट इच्छा नहीं है, बकेट की आवाज इतनी करेंगे कि दूसरी बार कोई व्यक्ति वो सेवा देगा नहीं। हाँ, तो हम सेवा करते भी हैं लेकिन उसमें उतना अपना मन हृदय नहीं डालते हैं। हाँ, लेकिन वो जो लेडी थी दुखी, वो सेवा इतनी सुंदर रूप से कर रहे थे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु का मन आकृष्ट हो, उन्होंने कहा अच्छा ये सारे घड़े भरे हुए हैं जल से, कौन है ये? उन्होंने इशारा किया, वो रही दुखी। तो महाप्रभु कहते हैं अच्छा ये दुखी कैसे हो सकती है, जो वैष्णव के कृष्ण की सेवा में लगी है वो दुखी नहीं हो सकती, इसका नाम क्या होना चाहिए आज से, सुखी। हाँ, तो ये विशेषता है चैतन्य महाप्रभु के आंखों में, हम छोटी से भी छोटी सेवा करते हैं हम महाप्रभु के प्रिय हो जाते, रिकॉग्नाइज करते चैतन्य महाप्रभु, भूलते नहीं। उसी को भगवान ने गीता में क्या कहा, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यश धर्मश त्रायते महतो भया। स्वल्पमप्यश धर्मश, स्वल्प ये जो भगवत भक्ति का धर्म कार्य है, थोड़ा सा भी कोई करता है तो भगवान का प्रिय हो जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं नवद्वीप मायापुर धाम में। कौन से धाम में? नवद्वीप मायापुर धाम। धाम का मतलब है निवास, धाम का अर्थ क्या है, निवास। प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं धाम का मतलब है जहां भगवान को, जहां भगवान क्विकली एक्सेस हो जाते हैं, मतलब बहुत सरलता से आप उनको अप्रोच कर पाते हो, वो स्थान धाम है। तो भगवान जब इस जगत में अवतरित होते हैं तो अपने सारे साज सामान के साथ आते हैं। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जो प्राकट्य आदि है, उनके कार्यकलाप, वो सब दिव्य है। तो जो वृंदावन है, क्योंकि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, हाँ, तो कृष्ण जब आते हैं तो अपने साथ अपना धाम लेके आते हैं वृंदावन, तो उसी प्रकार से वही कृष्णा कलियुगा में अवतरित होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। किस रूप में अवतरित होते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो वही धाम को भी अपने साथ लेकर आते हैं, वही वृंदावन क्या बन जाता है? नवद्वीप मायापुर धाम। वास्तव में उसका नाम है नव वृंदावन। क्या नाम है? जब ये वर्णन आता है अनंत संहिता में, जहां ये पार्वती देवी शिवजी को बड़े प्रश्न करती हैं, मुझे कभी भी आइडियल पति पत्नी के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक ही उदाहरण सामने आता है, वो कौन है? शिवजी और पार्वती। हाँ, तो शिवजी और पार्वती ये अमेजिंग पर्सनालिटीज हैं। हाँ, शिवजी विवाह करते हैं, कृष्ण ऑर्डर देते हैं शिवजी को एक स्थान में, कहते अरे जो सिंह पर बैठती रहती है ना उससे जाके मैरिज कर लो। शिवजी कहते हैं कन्वर्सेशन है पुराणों में, शिवजी कहते उससे शादी नहीं करूंगा, आपको भूल जाऊंगा भगवान। वो बहुत सारे कारण बताते हैं क्यों मुझे मैरिज नहीं करनी है शिवजी। इन फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे शिवजी की चर्चा आपके साथ। तो ऐसे शिवजी विवाह तो कर भी लेते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, विवाह के बाद रहने के लिए कोई स्थान उनके पास, उनकी बारात कहां पहुंचती है? पेड़ के नीचे। हाँ, आप सोचो कि महल फ्लैट्स वगैरह में जाएंगे शादी के बाद, शिवजी अपनी भार्या को लेकर फाइनली निवास स्थान एक वृक्ष के नीचे लेते हैं और वही उनका सब कुछ है। और कभी भी वर्णन नहीं आता कि पार्वती ने कोई कंप्लेंट की होगी, हाँ, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं। जहां पति वहां पत्नी, तो वहां बैठकर करते क्या है? वहां बैठकर ये दोनों केवल भगवान चर्चा में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे शिवजी और पार्वती निरंतर चर्चा में लगे रहते हैं। तो पार्वती ने उनको उस स्थान में प्रश्न पूछा, ये नवद्वीप मायापुर ये धाम क्या है, ये राधा रानी ने क्यों बनाया, इसको जरा मुझे बताइए। अनंत संहिता में वर्णन आता है। तो शिवजी हमेशा उत्साहित रहते हैं किसके बारे में बोलने के लिए? कृष्ण के बारे में। और सुनने के लिए भी दोनों होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बोलने में बहुत उत्साह रखते हैं, सुनने की बारी आती है तो नहीं। तो वहां शिवजी बोलते हैं उनका प्रश्न जब उन्होंने पूछा, और ऐसे कुछ समय बीतता है, एक बार बारिश आ जाती है, बारिश का समय आने वाला होता है। तो शिवजी कहते हैं, पार्वती कहते हैं अभी बारिश आ रहा है, कुछ रहने का निवास स्थान ढूंढो ना, कि कथा तो ठीक है लेकिन शेल्टर भी चाहिए जहां बैठ के कुछ किया जाए, भीगे ना, ठंड ना लगे, गर्मी ना लगे। कहते बारिश के समय आ रहे अभी। तो जैसे बारिश शुरू होने वाले थे, शिवजी क्या करते हैं, शिवजी को एक पसंद नहीं है भगवत चर्चा में कोई व्यत्यय। क्या है व्यत्यय शब्द? बीच में विघ्न या रुकनी नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप होनी चाहिए, कोई स्पीड ब्रेकर उनको पसंद नहीं है। हाँ, कंटिन्यूअसली होना चाहिए। तो वैसे ही जब बारिश आने वाली थी, शिव पार्वती बोल रही थी बारिश आ रही है अभी, क्या कुछ घर तो शादी होकर इतने साल हो गए, घर तो बनाओ। तो शिवजी क्या करते, अपनी पत्नी का हाथ उठाते, कन्वर्सेशन में बाधा नहीं होनी चाहिए, हाथ पकड़ते हैं और वैसे उसको बादलों के ऊपर ले जाते हैं। हम बादलों के ऊपर ले जाते हैं और क्या करते हैं, उसी प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसलिए शिवजी का एक नाम पुराण कहते हैं जिम केतु है, जिन्होंने अपनी कृष्ण कथा को रोका नहीं और हाथ पकड़कर बादलों के ऊपर ले गए कि कृष्ण का गुणगान निरंतर होता रहना चाहिए। तो जब ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो नवद्वीप मायापुर धाम है, ये कोई नया अलग से कुछ नहीं है, वो साक्षात क्या है? वृंदावन है। क्या है? वृंदावन है। तो वृंदावन शिवजी बोलने लगे, शिवजी कहते हैं जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, और कृष्ण की तुलना बंबल बी से या भ्रमर से करते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण भ्रमर के समान है, अलग अलग पुष्पों पर जाते हैं, या बंबल बी या फिर आने भी हैं, अलग अलग पुष्पों का आस्वादन करने के लिए जाती हैं या जाते हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि कृष्ण है जो ब्रज की गोपियों के साथ विहार करते हैं वृंदावन में। तो ऐसे भगवान एक गोपी के साथ थे जिनसे वार्तालाप चर्चा आदि कर रहे थे एक वन में, जिनका नाम था विरजा। और वो जब विरजा गोपी के साथ थे तो राधा रानी को पता चला कि कृष्ण तो विरजा सखी के साथ है। तो किसी ने बताया तो राधा रानी दौड़ती है कि अभी मैं जाती हूँ कृष्ण से बातचीत करने के लिए, कृष्णा अब विरजा सखी के साथ हो। तो जैसे ही राधा रानी निकलती है वहां तेज गति से कृष्ण को पता चलता है, और वो जिस गोपी के संग कृष्ण थे उस वन में वो गोपी को भी पता चलता है। तो उसी क्षण भगवान डरते हैं। हाँ, शास्त्र कहते हैं जैसे भागवत में कहा गया है, वातो बहती मद भया, कपिल देव कहते हैं कि ये जो वायु है मेरे भय से बहता है, सूर्य मेरे भय से उदित होता है, समंदर अपनी सीमा का लंघन नहीं करता। किसके भय से? मैं इतना मेरा डर है, और मेरा नाम भी नाम से भय जो साक्षात है वो भयभीत होता है, लेकिन मैं भी किसी से डरता हूं। किससे डरता हूं? किससे डरता हूं? श्रीमती राधा रानी से। भगवान श्रीमती राधा रानी से डरते हैं। और जैसे पता चला राधा रानी आ रही है तो कृष्णा हाँ तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं, और जो विरजा सखी है वो एक जल नदी के रूप में बदल जाती है, विरजा नदी। और वहां फिर राधा रानी सोचती है कि मैं भगवान कृष्ण के लिए एक ऐसा स्थान बनाऊंगी जिस स्थान को छोड़कर कृष्ण कभी जाएंगे नहीं, वही निवास करेंगे। तो अपने सारे सखियों को लेकर श्रीमती राधा रानी निकलती हैं, और दो नदियों के बीच में, एक ओर यमुना है दूसरी ओर गंगा है, यमुना का नाम जालंगी है लोकली। तो ऐसे दो नदियों के बीच में चली जाती हैं और वहां जाकर एक विशेष धाम का निर्माण करती हैं। और वो ऐसा सुंदर धाम अब इतना सुंदर बनाया जिसका वर्णन कौन कर रहे हैं? शिव जी अपने पत्नी को बोल रहे हैं। तो इतना सारा इतना सुंदर धाम का वर्ण निर्माण किया श्रीमती राधा रानी ने, किसके लिए? कृष्ण के लिए। जब वो धाम का निर्माण किया तो राधा रानी ने अपने हाथ में बांसुरी उठाई, बांसुरी उठाकर श्रीमती राधा रानी बांसुरी पर वादन करना शुरू करती हैं, बजाने लगती हैं, जिसको सुनकर कृष्ण आकृष्ट हो जाते हैं। और कृष्ण आ जाते हैं वहां, और कृष्ण देखते हैं कि अरे श्रीमती राधा रानी ने मेरे लिए इतने सुंदर धाम का निर्माण किया है। तो कृष्ण कहते ये तो वास्तव में राधिका, ये तो क्या है? नव वृंदावन है। किसने नाम दिया ये? कृष्ण ने। कृष्ण कहते ये तो नव वृंदावन है, नव ब्रजा है। हाँ, तो इस प्रकार से कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं ये तो द्वीप लग रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं नव द्वीप है, उसके अंदर भी अलग अलग द्वीप्स हैं। तो इस प्रकार से ये नाम भगवान कृष्ण के द्वारा दिया जाता है। और कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी भी इस स्थान को छोड़ूंगा नहीं, और अपना जो ओरिजिनल रूप है उस रूप में इस धाम में प्रकट होऊंगा। और क्या करूंगा? कृष्ण तुम्हारे हृदय में जो प्रेम की भावना मेरे प्रति है उस भावना का प्रचार प्रसार सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में करूंगा। इसलिए शिवजी ने जब ये वर्णन किया तो शिवजी और पार्वती भी लालायित होते हैं उस धाम में निवास करने के लिए। और उस धाम में ये दोनों जाकर क्या करते हैं? रहते हैं। पार्वती भी रहती है वहां, शिवजी भी जाकर रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण राधा रानी के द्वारा निर्मित जो धाम है नवद्वीप मायापुर, वहां जाकर निवास करते हैं, या फिर वहां जाकर क्या होते हैं? प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कौन है? शुरुआत में हमने चर्चा की कृष्ण है। हाँ, इससे वर्णन आता है कि द्वापर युग के अंत में भगवान ने कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का इतना बड़ा उपदेश दे दिया, और भगवत गीता के अंत में भगवान ने क्या कहा, सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मा शुच मीन्स डरो मत, तुम सारे भौतिक धर्मों का त्याग करो हे अर्जुन और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भगवान ने ये उपदेश देकर भगवान इस जगत से अप्रकट हो जाते हैं या चले जाते हैं। कृष्णे सदाम उपगते धर्म ज्ञानादि सहा, लेकिन भगवान अप्रकट होने के बाद इतने 5000 साल बीतते हैं, लेकिन भगवान इंतजार करते हैं अपने धाम में गोलोक वृंदावन में। अरे मैंने मेरी शरण ग्रहण करने के लिए इतना अमेजिंग लेक्चर दिया, इतना बोला उस महाभारत वो कहा कुरुक्षेत्र में, अरे मेरी शरण ग्रहण करो, मन मना भो मत भक्त, मेरा भक्त बनो। अभी तक कोई भक्त नहीं बन रहा है, कोई मेरी शरण नहीं ग्रहण कर रहा है। तो भगवान को लगा कुछ तो कमी है। क्या कमी थी? मैंने बोलने का काम किया, लेकिन कैसे करना है अपने आचरण से नहीं सिखाया। इसलिए भगवान कहते हैं आपनी आचरी भक्ति सिखाई सवारे, कि मैं क्या करूंगा, ये लोग समझ नहीं पा रहे, मेरी शरण ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, या कैसी मेरी भक्ति करनी चाहिए वो प्रैक्टिकली नहीं सिखाया। इसलिए कृष्ण गोलोक धाम में अब विचार करते हैं कि मैं कलियुगा में जाऊंगा इस भूतल पर, और जाकर एक भक्त का रूप धारण करूंगा और सारे संसार को सिखाऊंगा कि भगवत भक्ति कैसी करनी चाहिए, कृष्ण की शरण कैसी ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शिक्षा भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं, आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और एक भक्त का भाव धारण करते हैं। किसकी भाव, किसका भाव धारण करते हैं? भक्त का। कौन से भक्त का? श्रीमती राधा रानी का। क्योंकि भक्तों में भी सर्वोच्च भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी है। प्रभुपाद ने कहा आप मायापुर जाते हो तो वहां राधा रानी कृष्ण की ओर ऐसी मुद्रा में है, कृष्ण यहाँ है तो ऐसे हाथ की हुई है, तो झुकी हुई है, कुछ दे रही है, ऑफर कर रही है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण को प्रसन्न करना है तो सरल है, कुछ भी ऑफर करना है, फ्लावर लेके जा रहे हो किसके हाथ में पकड़ा दो? राधा रानी के। कृष्ण की हिम्मत नहीं है मना करने की, राधा रानी दे रही है, कृष्ण मना कर ही नहीं सकते। हाँ, कितने भी दुर्गुण हो किसी भक्त ने राधा रानी की शेल्टर में लिए है उसने, तो कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं। तो वही राधा रानी के प्रेम में कृष्ण बंधे हुए हैं। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी की भाव, राधा रानी का भाव और उनकी अंग कांति कृष्ण धारण करते हैं। हाँ, और इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। और वास्तव में एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु या भक्त के रूप में कृष्ण इसलिए आते हैं क्योंकि कृष्ण तीन चीजों को जानना चाहते थे। श्री राधाय प्रणय महिमा की दृशोवानेव, कि राधा रानी का प्रेम क्या है, मेरे प्रति सेवा की भावना की क्या है, मैं वो समझना चाहता हूं। और दूसरा राधा रानी की जो मेरा जो सौंदर्य है जिसका आस्वादन राधा रानी करती है, वो सौंदर्य या वो मधुरिमा क्या है। और तीसरी चीज भगवान जानना चाहते थे कि मेरी सेवा करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, वो आनंद में अनुभव करना चाहता हूं। इन तीन चीजों को समझने के लिए तद भावार्थे समझनो, कि उस भावना को समझने के लिए सची गर्भ सिंधु हरिंदु, कि भगवान कृष्ण सची माता के गर्भ से चैतन्य चंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये तीन चीजों को समझने के लिए वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरा धाम में अपने नवद्वीप मायापुर धाम में क्या होते हैं, अवतरित होते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि भगवान चैतन्य का अवतरित होने का परम उद्देश्य क्या है, सारे जीवों को भगवत भक्ति या भगवत प्रेम प्रदान करना। ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सबाकार जाचे, कि ब्रह्मा को भी जो चीज दुर्लभ है वो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वो कहते हैं श्री चैतन्य चंद्रेर दया करह विचार, विचार करेले चित्ते पावे चमत्कार। कि केवल चैतन्य महाप्रभु की दया क्या है उसके बारे में आप सोचोगे ना तो आप अपने हृदय में चमत्कार या आनंद अनुभव करोगे कि इससे दयालु और कौन हो सकता है। सारे अवतारों में हाँ सबसे अधिक दयालु या वरान्य आया चैतन्य महाप्रभु है। हाँ चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है, हमने वो लीला सुनी होगी कई बार। चैतन्य महाप्रभु एक बार कीर्तन करते हुए जा रहे थे गंगा के तट पर, तो वहां एक जगह गए जहां एक धोबी क्या कर रहा था। धोबी क्या करता है, कपड़े धोता है। धोबी हाँ कपड़े धो रहा था, कपड़ों को उठा उठा के पीट रहा था। कई बार होता है ना गुस्सा आ जाए, जो भी चीज हाथ में मिले हम उस पर सारा गुस्सा निकालते हैं, तो वैसे धोबी तो कपड़े धो रहा था। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए जा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे धोबी मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, इतना महत्वपूर्ण है, और मृत्यु तो अभी सामने है, नजदीक आ रही है। हमें महसूस होता है कि नहीं मृत्यु, बल्कि मृत्यु प्रतिदिन सामने देखनी चाहिए, तब आध्यात्मिक जीवन में इमरजेंसी महसूस होगी कि बस टाइम बहुत कम है। तो ऐसे धोबी जब धो रहा था कपड़े तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे भाई ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसको सार्थक करो। कैसे सार्थक करो, हरि नाम का उच्चारण करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन सफल हो सकता है जब व्यक्ति क्या उच्चारण करेगा, भगवान के नामों का उच्चारण करेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल विधि दी है कलयुग के जीवों के लिए। कलयुग के जीव हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते हैं, उसमें अत्यंत दक्ष है, और उनसे बहुत जटिल कठिन कार्य नहीं हो सकता आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति का सरल साधन भगवान का पवित्र नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए धोबी के पास गए, उसे कहा अरे भाई हरि नाम का उच्चारण करो, हरि नाम का उच्चारण करो। वो कहते हैं अच्छा हरि नाम का उच्चारण करो, मैं हरि नाम का उच्चारण करूंगा तो ये कपड़े कौन धोएगा। हाँ हम बोलते ना तुम आप तो सन्यासी हैं, साधु लोग हैं, आपका तो टाइम ही टाइम है, नौकरी कौन करेगा, बच्चों को कौन संभालेगा, पैसे कौन कमाएगा, हाँ मैं घर कौन देखभाल करेगा। तो इतने सारे बहाने होते हैं हमें, लेकिन वास्तव में यदि लाइफ में प्रायोरिटी हम डाले ना कृष्ण को तो सारी चीजें सूत्रबद्ध हो जाती, हम बन जाती हैं। हाँ जैसे भगवान गीता में कहते हैं सारे जो मनी हैं वो एक साथ कैसे रह जाते हैं, सूत्र के कारण उसमें धागा। उसी प्रकार से कृष्ण को हम सामने रखेंगे, प्रायोरिटी देंगे अपने लाइफ में, तो बाकी चीजें सुव्यवस्थित होने में समय नहीं लगेगा। हर एक मनी को आप इकट्ठा करो पकड़ के रखो बहुत मुश्किल है। तो उस लेकिन जैसे पांडवों ने क्या किया अपने जीवन में, पांडवों ने हमेशा प्राथमिकता दी भगवान कृष्ण को, चाहे उनके सुख के दिन हो या दुख के दिन हो, यही पांडवों की विशेषता थी। इंद्रप्रस्थ जैसे बड़े महल में निवास कर रहे थे तो भी उतने कृष्ण भावना भावित थे, उतनी सेवा की भावना थी। उस महल से उनको बाहर वनवास में जंगल वगैरह में रहना पड़ा, उस समय भी उतने ही कृष्ण भावना भावित थे, उतनी ही कृष्ण सेवा की लालसा थी। हाँ तो ऐसे ही हम अपने जीवन में प्राथमिकता दें तो आध्यात्मिक जीवन सरल हो सकता है। तो धोबी ने कहा मेरा तो काम ये कपड़े धोना है, कपड़े नहीं धोऊंगा मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, पत्नी हमेशा डांटती रहेगी, हाँ तो कपड़े कौन धोएगा। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे धोबी कपड़े मैं धोऊंगा, लेकिन तुम क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु हमें धोने ही आए हैं, हमारी धुलाई आवश्यक है। अच्छा है महाप्रभु के द्वारा अपने आप को धुलाओ, नहीं तो उनकी एक बहिरंगा शक्ति है, मम माया दुरतया, ये शब्द हमेशा याद रखिए। भगवान कहते मेरी एक बहिरंगा शक्ति है, वो बहुत भयानक रूप से धुलाई करती है, फिर व्यक्ति ऐसे हाथ करके आ जाता है, भगवान बस बहुत हो गया, हाँ तो धुलाई करवा लो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, आपने आपको धुलाओ किससे, नामामृत के, नामामृत से। तो ऐसे उस धोबी ने जब ये शब्द उसके कानों में गए ना, कौन से शब्द, मैं कपड़े धोऊंगा तुम हरि नाम ले लो, कितने दयालु हैं, अब सोचो। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते केवल जीवन भर एक चीज के बारे में सोचोगे ना, महाप्रभु की दया आंखें भर जाएंगी। अरे ऐसा दयालु कौन है इस संसार में, कौन उपकार करने की भावना रखता है, कोई किसी का नहीं है। हर एक व्यक्ति हमसे प्रेम से आचरण करता है जब तक हम उसकी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उसकी डिमांड पूर्ति करते हैं, उसको यस करते हैं, हा हा करते हैं, हाँ तो वो हमारे ऊपर प्रेम और उपकार की भावना या हितेशी की भावना प्रदर्शित करता है। अन्यथा हमारे चाहे जितने भी निकटतम लोग हो, पारिवारिक जन क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, सब क्या है, स्वार्थी है। जब तक उनकी भूख हम मिटाते हैं भौतिक रूप से, तब तक हमारे वो प्रेमी हैं, अन्य तो वो प्रेम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु जीवों के प्रति इतने दयालु हैं, उस धोबी ने जैसे सुना कि मैं कपड़े धोऊंगा, उसका हृदय पिघल गया। हाँ हृदय पिघलते ही उसका लक्षण क्या है, आंखों से आंसू आने लगे। तो वो जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी सुनी, तो वो जो धोबी है वो वास्तव में नाम करने लगता है, हरे नाम लेने लगता है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है। तो इस प्रकार से वास्तव में चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं, और वो क्या करते हैं, सब जीवों के ऊपर अपनी दया की भावना रखते हैं। हम देखो चाइना में चाइनीज लोग अभी हरे नाम कर रहे हैं, वो र है नहीं उनकी लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं, हले लाम 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 हरे हरे, र है नहीं, लेकिन नाम उतना ही पावरफुल है। हाँ तो इस प्रकार से सोचो, सारे जीवों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो रही है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु आए हैं, अवतरित हुए हैं सारे जगत का उद्धार करने के लिए। अपने सुख की उन्होंने कामना नहीं रखी, अपने सुख के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, दूसरों के सुख के बारे में सोचा। और वास्तव में सुखी होने का यही सीक्रेट है, जितना अधिक हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने सुख के बारे में सोचते हैं, कभी भी सुख और शांति हम अनुभव नहीं करेंगे। जब हम दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने की भावना अपने हृदय में लाते हैं ना, तो जो आनंद अनुभव हम करते हैं उसकी कोई तुलना नहीं है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, संन्यास। भगवान आते हैं भक्त के रूप में, सब उन्होंने भक्त का आचरण प्रस्तुत किया है, और जिसमें उन्होंने देखा कि मैं तो सारे जीवों का उद्धार करने के लिए आया, लेकिन कुछ लोग मुझसे द्वेष और ईर्ष्या करते हैं। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए मायापुर में, और उनका नाम, हाँ बचपन का नाम क्या था, निमाय, निमाय पंडित। तो निमाय पंडित ये उन सीता ठाकुरानी ने नाम दिया हुआ है, अद्वैत आचार्य की भारिया, और उनको गौरांग नाम भी दिया गया। किसके द्वारा ये नाम दिया गया, उनके पिता जगन्नाथ मिश्र, क्योंकि उनका अंग कैसे था, गोरा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने सोचा कि मुझे राधा रानी के प्रेम को समझना है, मेरे सौंदर्य को देखकर आनंद क्या अनुभव होता है उसको जानना है, राधा रानी मेरी सेवा करके जो आनंद अनुभव करती है उसको समझना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को चेंज करना होगा। तो वही कृष्णा राधा रानी से दो चीजें लेकर आते हैं, या राधा रानी की दो चीजें कृष्ण जब चुराते हैं और स्वयं उसको धारण करते हैं, वही क्या बन जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु। उसको कहते हैं कि जो काला चांद है, कृष्ण का नाम क्या है पता है आपको? क्या है? काला चांद। प्रभुपाद ने एक डिटेल्स भी स्थापित किए, मुझे याद नहीं शिकागो या कहां है प्रभु, टेक्सास में है हाँ, काला चांद। तो वो काला चांद जब राधा रानी से दो चीजें ले लेते हैं, चुरा लेते हैं, दो चीजें क्या? राधा रानी का वर्ण और राधा रानी का हृदय। हाँ, क्योंकि हृदय में बहुत दया है राधा रानी के। आप जानते बरसाना से राधा रानी एक बार नंदगांव गई, और वहां जब गई तो वहां देखा कृष्ण रोज सुबह उठते हैं नंद महाराज के साथ, उठकर वो बाहर आ जाते हैं और सुबह सुबह सारे जो भी लोग उनके दरवाजे में आ रहा है उसको हर चीज दान में देते हैं, और लेकिन इतनी लंबी लाइन होती है, सबको दान में देते जा रहे हैं और हर एक के पास पात्र होता है। और जो राधा रानी अपने पिता वृषभानु महाराज के साथ भी वहां गए थे नंदगांव, अभी वैसे होली के दिन शुरू हो गए हैं, बरसाना नंदगांव तो होली मना रहा होगा, तो वहां जब राधा रानी ने देखा पहले तो बहुत आनंदित हो गई, कृष्ण तो इतने दया की भावना दिखा रहे, सबको दान दे रहे सुबह उठकर, और देखा कि पात्र जितना पात्र भर भर के दे रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे लाइन में खड़े थे जिनके पास पात्र नहीं था। तो वो राधा रानी ने जब देखा कि जिनके पास पात्र नहीं है उनको तो लाइन से हटा दिया कृष्ण ने, उनको कुछ नहीं मिलेगा, साइड में हो जाओ, तो राधा रानी को बहुत दुख लगा। वो आती है वहां यहां बरसाना में और अपने पिता वृषभानु महाराज से बोलती है कि कृष्ण का ये जो व्यवहार है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरे हृदय में ठेच पहुंची है, दुखी हो गई हूं। तो फिर बाद में ये बताया जाता है, तो वही जो भाव था उनका, राधा रानी का भाव था कि चाहे जिसके पास पात्र हो या नहीं हो सबको लाभ मिलना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण फिर प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं वो राधा रानी का हृदय धारण करूंगा जिस हृदय में ये भावना है, पात्र हो या ना हो उसको मिलना चाहिए लाभ। तो वही हृदय राधा रानी का कृष्ण ने धारण किया, पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थाना स्थान, पात्र अपात्र का विचार नहीं किया चैतन्य महाप्रभु ने, और स्थान का भी विचार नहीं किया, ये कौन से आश्रम में है, वर्ण में आदि है, लेकिन जो जहां मिला उसे क्या दिया उन्होंने? कृष्ण प्रेम हरि नाम दिया। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन आ रहे थे तो बीच में एक जंगल लगा, झारखंड का जंगल, और झारखंड के जंगल में चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वहां तो हाथी शेर, हाँ पहले तो देखा चैतन्य महाप्रभु इसे चल रहे थे और उनका जो अंगूठा है एक शेर को लगता है, शेर को कहते हैं अरे शेर हरे नाम लो हरे कृष्ण बोलो, वो शेर खड़ा हो जाता है दो पांव में और हरे कृष्ण बोलने लगता है। फिर महाप्रभु जल में जाते तो वहां हाथी थे, थोड़ा जल लेते हाथी के ऊपर डालते हैं, कहते हरे कृष्णा कहो, क्या कहो? तो हाथी भी हरे कृष्णा कहने लगता है, और फिर महाप्रभु कीर्तन करने लगते हैं तो सारे जानवर शेर हिरण हाथी सब पशु एकत्रित होते हैं और गले में गला डालकर वो कहते हैं कि शेर ने जो हिरण है उसने अपने दोनों हाथ किसके गले में डाल दिए? शेर के मुंह से चुंबन कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो पशु हरि नाम ले रहे, और आजकल तो सारे पशु हैं द्विपाद पशु, प्रभुपाद गए वही चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मोर सेनापति भक्त जाए वे तथा है, कि मैं इस जगत में अवतरित होऊंगा। नारद को बोला था भगवान ने, क्योंकि नारद के हृदय में बहुत दुख था कलयुग के जीवों के लिए, तो भगवान ने कहा था कि मैं अवतरित होऊंगा, हाथ में तलवार लेकर अवतरित होऊंगा कलयुग में। कौन सी तलवार? संकीर्तन की तलवार। संकीर्तन खड़ग लैया हाते, हाथ में संकीर्तन का खड़ग तलवार लूंगा और जीवों के हृदय में जो भौतिक भोग की भावना है उसको काट के फेंक दूंगा और उसमें प्रेम स्थापित करूंगा, ऐसे भगवान ने कहा था। तो भगवान ने कहा ऐसे करूंगा मैं इस अवतार में अवतरित होकर, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे दूर भाग के चले जाएंगे, दूर जाए बे दूर देशे, दूर दूर के देशों में जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि लेकिन वहां मोर सेनापति भक्त जाए बे तथा, एक मेरा भक्त इस जगत में अवतरित होगा, वो दूर दूर के देशों में जाएगा और वहां जाकर भी क्या करेगा, उनको हरि नाम देगा। वो भक्त कौन थे? श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु ने बोला था। तो ऐसे प्रभुपाद भी क्या करते हैं, जो विदेशी हिप्पीज थे, ब्लेचर्स, यवनास, वो पशु के समान ही तो है उनका जीवन, द्विपद पशु है, वो सारे द्विपद पशुओं को इकट्ठा कर दिया और कीर्तन निकाल दिया। हाँ, तो अब देखो ये चैतन्य महाप्रभु की दया है कि अलग अलग रंग, हाँ, भेद आदि वर्ण जाति पाति का विचार नहीं, वो हजारों हजारों लोग सब एकत्रित आ रहे हैं और कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के कारण, तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतरित होते हैं और जीवों का कल्याण करने के लिए खुद कष्ट उठाते हैं और वो क्या करते हैं, संन्यास स्वीकार करते हैं। संन्यास लेना मीन्स मर जाना, क्या? मृत्यु, ऑफिशियली डेड, लीगली डेड कहा जाता है। तो संन्यास मीन्स मृत्यु है, संन्यास सत न्यास, सत मीन्स एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान, जिनके लिए न्यास का मतलब है त्याग करना, भगवान के लिए सब कुछ त्याग करना, वो वास्तव में क्या है? संन्यास है। और जिसमें अपने सुख की कामना नहीं करना, अपने सुख की कोई कामना नहीं है, दूसरों के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग देना, वो वास्तव में संन्यास है और भगवत सेवा में नियुक्त होना। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं, हाँ, दूसरों के हित के लिए, और संन्यास स्वीकार करके सारे जगत को कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावना प्रदान करते हैं हरि नाम के द्वारा। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, भगवान जब इस जगत में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो अपने साथ वो हरि नाम लेके आते हैं। हाँ, हरि नाम कहाँ का प्रोडक्ट है? गोलोक वृंदावन का। हम हमेशा दूसरे देश का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो भगवान ने सोचे बद्ध जीव हमेशा पागल है, तो मैं उस देश का लाऊंगा गोलोक वृंदावन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रोडक्ट लेके आऊंगा हरि नाम, और हरि नाम के द्वारा ये सारे जीवों का उद्धार कराऊंगा। तो ये विशेष देन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की है। तो ये जो अगले संडे गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु क्या होते हैं, अवतरित हो जाते हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा पूर्ण रूपेण प्रकट होता है, बल्कि उस दिन चंद्रमा लज्जित हो जाता है। अरे ये गोरा चांद, महाप्रभु का एक नाम गौरांग है, ये गोरा चांद अवतरित हो रहा है तो ये भौतिक जो चंद्रमा है वो लज्जित हो जाता है, वो सामने नहीं आता, वो सोचता है मेरे अंदर तो इतने सारे कलंक है, इतने सारे दाग है, और निष्कलंक गौरांग देव गौरांग चांद अवतरित हो रहे हैं तो मैं उनके सामने कैसे चला जाऊंगा। तो ऐसे विशेष अवतार या भगवान स्वयं अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, सची माता को अपनी माता के रूप में स्वीकार करते हैं, जगन्नाथ मिश्र को अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। लगभग 528 या 30 समथिंग साल पूर्व भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में बंगाल में नवद्वीप मायापुर में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो ये विशेष विशेष दिन या उत्सव आ रहा है, तो आप सबसे निवेदन है कि उस दिन भी उत्सव में भाग लीजिए और साथ ही साथ क्या कीजिए, अधिक से अधिक चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में जानने का, श्रवण करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नित्याय गौर सुंदर की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।